वहीं प्रियंका और सीमा उस समय दोनों अलग अलग बैठी हुई थीं। दुनिया भर का खाना, तमाम तरह की डिशेज, अलग अलग तरह की वैरायटी का खाना वहां मौजूद था। सभी बस आस्था और अरमान के आने का इंतजार कर रहे थे। अब आगे? वहीं सीमा ने प्रियंका के कानों में कहा, क्या उन लोगों का इंतजार करना जरूरी है? इतना लजीज खाना देखने के बाद मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा है कि मैं रुक जाऊं। लेकिन ना जाने आस्था महारानी कहाँ रह गई है। जब तक वो नहीं आएगी तब तक हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तभी नानी माँ ने उन्हें खुसर-फुसर करते हुए देख लिया था और मन ही मन में चिढ़ गई थीं और सोचने लगी, बस कुछ दिन तक अरमान और प्रियंका की शादी का ड्रामा खत्म हो जाए, उसके बाद वो प्रियंका को सही से सबक सिखाएंगी। वेल, दादाजी ने बारी बारी से सभी को देखा। सभी उस वक्त एक साथ बैठे हुए थे, एक तरफ सुमित, राधिका और आकाश, रश्मि, आहान, ध्रुव, प्रियंका, उसकी माँ सीमा, नानी माँ, दादीजी, मारिया, टाइगर, उस वक्त सभी वहां मौजूद थे। दादाजी मारिया और टाइगर को अपनी फैमिली का ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा मानते थे। वो उन्हें बिल्कुल पूरी तरह से फैमिली के जैसा ही ट्रीट करते थे। वो अच्छी तरह से जानते थे मारिया और टाइगर अरमान के लिए किसी की जान ले भी सकते हैं और अपनी जान खुशी-खुशी दे भी सकते हैं। वेल, तभी दादाजी ने थोड़े से लो वॉइस में टाइगर की ओर देख कर कहा, टाइगर, ये अरमान कहाँ रह गया, देख कर आओ। तभी आहान बोला, लेकिन दादाजी, भैया का यहाँ आना ज़रूरी तो नहीं है। वैसे भी उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मुझे लगता है कि हमें उनका नाश्ता उनके कमरे में भिजवा देना चाहिए, उन्हें आराम करने देना चाहिए। जैसे ही आहान ने ये कहा, दादाजी मन ही मन में कुछ सोचने लगे और मन में बोले, अरे बच्चे, तुझे क्या बताऊं? अगर अरमान आराम करने वालों में से होता तो मुझे शायद इतनी परेशानी ना होती। भले ही उसके जिस्म पर कितने ही घाव क्यों ना हो, लेकिन वो काम करने ज़रूर जाएगा, दादाजी मन मन में सोच रहे थे। तभी सीढ़ियों से आस्था और अरमान के आने की आहट सुनाई देती है और सभी मुड़कर उस ओर देखने लगते हैं। अरमान ने आस्था के जैसे ही ग्रीन सूट पहना था जिसमें वो बेहद डैशिंग लग रहा था। उसने अपने पूरे जिस्म पर अच्छे से धोकर दवाई अप्लाई कर ली थी। हालांकि डॉक्टर ने उसे उसके जख्म भिगाने से मना किया था, लेकिन अरमान किसी की कहां सुनने वाला था। डॉक्टर से जल्दी ही उसने इस मामले में बात कर ली थी और अच्छे से मेडिसिन वगैरह लेने के बाद जल्दी ही सीढ़ियों से वो नीचे आ रहा था। वहीं आस्था और अरमान दोनों ही एक साथ बड़े ही प्यारे लग रहे थे। वहीं प्रियंका ये देखकर पूरी तरह से चिढ़ गई थी। वहीं सीमा जी मन ही मन में कोसने लगी, ये गवार लड़की के क्या ठाट पाट हैं, देखो तो सही किस तरह से महारानियों की तरह सीढ़ियों से चलकर आ रही है। वहीं आस्था बेहद खूबसूरत लग रही थी, किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। उस वक्त आस्था और अरमान वहां आए। दादाजी उन दोनों को देखकर बोले, बहुत अच्छा हुआ बेटा अब दोनों आ गए, आओ फटाफट से नाश्ता कर लो। तभी अरमान ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उत्तर दिया, नहीं दादाजी, हम नाश्ता ऑफिस में कर लेंगे, हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जैसे ही अरमान ने ये कहा, सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। तभी नानी माँ तुरंत उठकर अरमान के पास आती हैं और चिंता करते हुए बोली, लेकिन बेटा आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है। दामाद जी, आपको इस तरह से ऑफिस में नहीं जाना चाहिए, आपको घर पर रहकर आराम करना चाहिए। और वैसे भी आस्था बेटी को हल्दी लगी है, इस तरह से उसका घर से बाहर जाना ठीक नहीं है। जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, अरमान घूर कर नानी माँ को देखने लगा। एक पल को तो अरमान के मन में आया कि नानी माँ को उठाकर वाकई वो जंगल में ही फेंक आए। वेल, अरमान अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लाकर बोला, आपको इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है नानी माँ, मैं मैनेज कर लूंगा और आज आस्था मेरे साथ ऑफिस जाएगी। तब नानी माँ ने रोकने की एक और कोशिश की और बोली, लेकिन बेटा मेहंदी का फंक्शन भी तो करना है। जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, अरमान ने एक नज़र नानी माँ को देखा, उसके बाद वो घूर कर बाकी सबको देखने लगा। अरमान का घूरना देखकर फिर अगले ही पल आकाश आकर टोकते हुए बोला, नानी माँ, मुझे लगता है कि हमें शादी पोस्टपोन कर देनी चाहिए, हम शादी के फंक्शन बाद में भी कर सकते हैं, अभी अरमान का ठीक होना ज़रूरी है। तभी अरमान बोला, नहीं नहीं, शादी अपने इसी टाइम पर होगी जो टाइम रखा गया है, और मेहंदी का फंक्शन कल शाम को होगा। ऐसा बोलकर अरमान ने आस्था का हाथ कसकर पकड़ा और उसे लेकर बाहर की तरफ जाने लगा। वहीं टाइगर और मारिया एक झटके से खड़े हो गए थे, फटाफट से अरमान और आस्था के साथ जाने लगे थे। सुमित, आकाश, ध्रुव, आहान, चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। कहीं ना कहीं जो वे सोच रहे थे उनकी बात सच होती नजर आ रही थी। जल्दी ही अरमान आस्था को लेकर गाड़ी में बैठ चुका था। आस्था तो वैसे ही अरमान के साथ 24 घंटे रहना चाहती थी, उसके आसपास रहना उसे बेहद पसंद था, लेकिन न जाने क्यों आज अरमान के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। वेल, जल्दी ही अरमान ने तिरछी सी नजरों से आस्था की ओर देखा और अचानक आस्था का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लिया और अपने चेहरे को आस्था के कंधों पर बैकसाइड से रख दिया था। अब तो आस्था थोड़ी और नर्वस हो गई थी। हालांकि वो अरमान से बेहद मोहब्बत करने लगी थी, जिसका कोई अंदाजा भी नहीं था, लेकिन कुछ अजीब सा माहौल था जो उसे खटक रहा था। जल्दी ही मारिया ने गाड़ी अरमान के शानदार ऑफिस के सामने रोक दी थी, और तभी टाइगर और मारिया, जो कि आगे फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे, उनकी आवाज आती है, किंग ऑफिस आ गया है। अब आस्था को तो पता ही नहीं था कि मारिया गाड़ी चला रही थी, क्योंकि अरमान ने गाड़ी में बैठते ही पार्टीशन ऑन कर दिए थे। तब अरमान ने एक नजर आस्था को देखा और जल्दी ही गाड़ी से बाहर निकाला, और जैसे ही अरमान गाड़ी से बाहर निकला, अचानक से कम 70-80 गाड़ियों ने तुरंत आकर अरमान को चारों तरफ से घेर लिया था। आस्था इतनी सारी गाड़ियां एक साथ लगातार वहां देखकर पूरी तरह से चौंक गई थी। तब तक मारिया और टाइगर दोनों एक्टिव हो गए थे और अपनी अपनी बंदूक निकालकर अरमान और आस्था के सामने खड़े हो गए थे। आस्था हैरानी से मारिया को देखने लगी। मारिया ने जिस तरह से हाथ में बंदूक पकड़ी हुई थी, उसे इस बात का साफ अंदाजा हो रहा था कि मारिया को बंदूक चलाना कितना पसंद होगा। इनफैक्ट उसकी फाइटिंग स्किल कितनी कमाल की होगी। आस्था तो उस वक्त काफी ज्यादा डरी हुई थी कि अचानक से इतनी सारी गाड़ियां कहां से आ गईं। वहीं अरमान के चेहरे पर किसी तरह का कोई इमोशंस नहीं था। तभी उन गाड़ियों में से एकदम ब्लू ब्लैक बिजनेस सूट पहने हुए एक 50 से 55 साल का आदमी बाहर निकलता है। वो आदमी देखने में खुद को इतना फिट करके रखा हुआ था कि उसकी उम्र 40 या 45 साल के अकॉर्डिंग लग रही थी। अरमान ने जैसे ही उस आदमी को देखा तो उसकी भौहें तन गई थीं और आंखों में लालिमा छा गई थी। अरमान उस वक्त फिजिकली बिल्कुल पूरी तरह से फिट नहीं था, लेकिन उस आदमी को देखने के बाद उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को जोरों से कसकर बंद कर दिया था। इतना ही नहीं, अरमान के कंधे और बाइसेप्स चटकने की आवाज आस्था के कानों में भी सुनाई देती है। वहीं आस्था ने अरमान की बाजू को कसकर पकड़ा हुआ था, क्योंकि इस वक्त वो बेहद डरी हुई थी और अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से कभी अरमान को देख रही थी तो कभी इतनी सारी गाड़ियां, इतने सारे आदमी, गार्ड और साथ ही साथ उस आदमी को देख रही थी, जो कि अरमान की तरफ बड़े ही पावरफुल ऑरा के साथ बढ़ रहा था। टाइगर और मारिया सीधा आस्था और अरमान के सामने खड़े होकर बंदूक उन आदमियों की तरफ तान दिए थे। हालांकि उस वक्त वहां पर 100 से ज्यादा गार्ड्स मौजूद थे, जिनके हाथों में बंदूकें थीं, और उन्हीं के बीच में से होते हुए आ रहा था अमरीश रायचंद। अमरीश रायचंद कोई और नहीं बल्कि वीर रायचंद का बाप और वसुंधरा का पति था।
अमरीश को अपने सामने देखने के बाद अरमान का पारा बेहद बढ़ चुका था, लेकिन फिलहाल वो आस्था के साथ अपने अंदर के तूफान को समेटे हुए खड़ा हुआ था। और वो अरमान के पास आकर खड़ा हो गया था और अपने ब्लैक शेड्स को निकालकर अरमान की ओर अपनी गंदी आंखों से देखने लगा। साथ ही साथ वो कभी मारिया को देख रहा था तो कभी टाइगर को देख रहा था। वहीं घबराई हुई आस्था उस वक्त अरमान की बाजू में ही अपना सर छुपाकर खड़ी हुई थी। वो अमरीश की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रही थी। तब अमरीश ने टाइगर और मारिया की ओर देखकर कहा, तुम दोनों को इतना ज्यादा पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे किंग से बातें करने के लिए यहां आया हूं। जैसे ही अमरीश ने अरमान का नाम लिया, अरमान ने उसे केवल एक सपाट लुक दिया था और उसे कुछ नहीं बोला। तभी अमरीश कहने लगा, यू नो वॉट अरमान सिंघानिया, मुझे तो लगा था कि तुम लोगों का चैप्टर मैंने 18 साल पहले ही खत्म कर चुका हूं, लेकिन डेस्टिनी देखो, तुम घूम फिर के मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे उस बूढ़े दादा ने तुम्हारी जान लेकर खुद को भी फांसी लगा ली होगी, लेकिन ये क्या, तुम तो जिंदा रहे, बल्कि आज तुम अमरीश रायचंद के सामने मुंह उठाकर खड़े हो। इतनी औकात हो गई है तुम्हारी, मानना पड़ेगा। अरमान सिंघानिया, कुछ तो बात थी अभिमान के खून में। अब जैसे ही अमरीश ने ये कहा, तब अरमान ने अपने सीधे हाथ को हल्का सा ऊपर उठाया था और तुरंत अमरीश का गला पकड़ लिया था। अमरीश का गला पकड़कर उसने जोरों से दबाना शुरू कर दिया था। तब तक उसके सभी आदमियों ने आकर अरमान और आस्था दोनों को ही गन पॉइंट पर ले लिया था। वहीं टाइगर और मारिया दोनों ही मुस्कुरा रहे थे और मन ही मन में सोच रहे थे, आया था डेविल किंग को धमकी देने वाला या टॉन्ट करने वाला, लेकिन आज अपनी जान से जाएगा। क्योंकि अरमान जब से प्यार में हुआ था, उसने कोई खतरनाक काम ही नहीं किया था, वो तो केवल स्वीट सी प्यार वाली फीलिंग एंजॉय कर रहा था। लेकिन अब एक तो अबीर सिंह राठौर जाकर उसके अंदर का ऑब्सेशन जगा दिया था, और अब ये अमरीश रायचंद ने जाकर अरमान के अंदर का डेविल किंग जगा दिया था, जो कि काफी समय से सोया हुआ था, जिसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, किसी को मौत नहीं दी थी। वरना डेविल किंग के हाथों से मरने से बेहतर इंसान खुदकुशी करना पसंद करता है। तभी अमरीश रायचंद ने खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की, उल्टा वो हंसने लगा। अब अमरीश को इस तरह से हंसते हुए देखकर अरमान के माथे पर बल पड़ गए और उसने उसे छोड़ दिया था। वो जानना चाहता था कि आखिरकार अपनी मौत सामने देखने के बाद भी इस तरह से हंसने का क्या मतलब हो सकता है। तभी अमरीश रायचंद ने अरमान की ओर देखकर कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम आसानी से मेरी जान ले सकते हो। इनफैक्ट जब तुम मेरा ऑस्ट्रेलिया का सारा धंधा बंद करवा सकते हो, इंडिया में मेरा जमा जमाया सारा बिजनेस ठप कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए मेरी जान लेना क्या बड़ी बात हो सकती है। अरमान सिंघानिया, लेकिन मेरी जान लेने के बाद भी तुम हारोगे, तुम जीत नहीं पाओगे। मैंने तो कसम खाई थी कि तेरे पिता को मैं पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, और देखो मैं उसमें कामयाब हो गया। बड़ा नाज था उसे अपनी खूबसूरत बीवी वसुंधरा पर, लेकिन मैं उसी की आंखों के सामने उसी के बेड पर उसके साथ रातें रंगीन की और फिर उसे उसकी जिंदगी से छीन लिया, तुम्हें अनाथ बना दिया, उसी के हाथों उसे जान देने पर मजबूर कर दिया। मैं तो इस जिंदगी में जो कुछ करना चाहता था कर चुका हूँ। अगर तुम मेरी जान लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वैसे भी मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ। तभी अरमान तिरछा सा मुस्कुराकर उसकी ओर देखकर बोला, इतनी भी क्या जल्दी है जान जाने की? हाँ, मैं तुम्हारी जान लेना चाहता हूँ, लेकिन जब तक तुम मुझसे जान की भीख नहीं मांगोगे, जब तक मैं तुम्हें इतना मजबूर नहीं कर देता कि तुम मेरे सामने अपनी जान की भीख मांगो, तब तक मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। बहुत प्यार करता है ना अपने बेटे से? अब देख अरमान सिंघानिया वीर रायचंद की जिंदगी में क्या तबाही मचाता है। अगर वाकई तुम में हिम्मत है तो बचाकर दिखा अपने बेटे को। ऐसा बोलकर अरमान ने बड़ा ही नॉर्मल सा लुक अमरेश रायचंद को दिया। एक पल को वीर का नाम आने पर अमरेश रायचंद छिप गया था, क्योंकि वो अपने बेटे से बेहद मोहब्बत किया करता था। वसुंधरा से पहले भी उसने दो शादियां कर रखी थीं, लेकिन दोनों शादियों से ही उसे कोई औलाद नहीं थी। लेकिन वसुंधरा से शादी उसने सिर्फ और सिर्फ अभिमान से बदला लेने के लिए की थी, क्योंकि उसका वसुंधरा से कुछ खास शादी करने का इरादा नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ अभिमान यानी कि अरमान के पिता को नीचा दिखाना चाहता था, इसीलिए कुछ रातें वो वसुंधरा के साथ गुजारना चाहता था, जो कि वो कर चुका था। लेकिन जब उसे ये पता चला कि वसुंधरा उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तब उसने उसे शादी के लिए फोर्स करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अमरीश रायचंद की कोई औलाद नहीं थी, तो इसीलिए उसने वसुंधरा को शादी के लिए फोर्स किया और उससे शादी कर ली। तो अब वो वीर से बेहद प्यार किया करता था, वीर की जिंदगी में वो इतनी सी भी मुश्किलें नहीं आने देना चाहता था। लेकिन